This is a News Laundry podcast, and you're listening to Reporters Without Orders.
Order, order. Hello and welcome to Reporters Without Orders, a podcast where we talk about what made news, what didn't, and some things that absolutely shouldn't have. I'm your host, Snigdha, and joining me today are two News Laundry reporters, Pratik Goyal and Basant Kumar. Hello, both of you.
Hi,
hello, and namaskar.
Namaskar. And we're also very delighted to have with us today Anumeha Yadav. Those of you who follow News Laundry regularly will know her for some brilliant reports that she did during the general elections last year from Gujarat and Jharkhand. And recently she's been covering COVID-19. Anumeha is an independent journalist who focuses on rural and labor policy. Hello, Anumeha. Thank you so much for joining us.
Hi, Snigdha. Thank you. That's too generous an introduction, but
And before we begin the podcast, I want to tell all the new listeners about News Laundry. We are a 100% ad-free news platform, and we need your support to stay afloat, especially in times like these. So please subscribe to us and pay to keep news free. Go to newslaundry.com and click on the subscribe button on the top right corner of the website. And also, those of you who are listening to this podcast on Spotify and other platforms, do check out our website, newslaundry.com. We have a bunch of other stuff apart from podcasts, like videos and ground reports and comics. Please do check out our website. So, shall we begin with some bizarre news, guys?
Aajkal, matlab, mujhe lag raha hai, jis tarike se UP police kaam kar rahi hai, jo fact check karne wale log hain, unke rozgar pe sankat aane wala. फेक न्यूज को ब्लास्ट कर रही है यूपी पुलिस खुद ही. अब देखिए, कल जो एक जमात को लेकर ऐसी ऐसी खबरें आ रही है कि 25 रोटी मांग रहा है कोई जमात वाला, कोई तकिया और तकिया उठा के मुंह पे फेंक दे रहा है किसी के, ऐसी ऐसी खबरें आ रही है. वैसे में कल
कोई बोल रहे हैं कि अंडा करी और बिरयानी मांग रहे हैं.
हाँ, मतलब ऐसे ऐसा लग रहा है जमात के लोग किसी अलग ही दुनिया से आए हुए हैं, इंडियन तो है ही नहीं. तो खैर, कल नोएडा में क्या हुआ कि 200 लोगों को, लगभग 200 संख्या बताई जा रही है, हालांकि संख्या ज्यादा है, कोई यूपी पुलिस ने एहतियातन क्वारंटाइन किया और ले गए उनको ग्रेटर नोएडा. एएनआई जो एक मतलब सिर्फ एक न्यूज एजेंसी है जिसे काफी सारे लोग न्यूज लेते हैं, उसने ट्वीट कर दिया कि ये लोग जमाती जिन पे हमारा नेशनल मीडिया पूरा कोविड-19 फैलाने का आरोप लगा चुका है, तो वो उन जमातियों के संपर्क में आने की वजह से ये लोग प्रभावित हुए हैं. इसको नोएडा पुलिस ने वो किया कि ये फेक न्यूज. और सबसे हैरान करने वाली बात है कि ये बात एक अधिकारी के कोर्ट के जरिए लिख दी गई थी,
एएनआई पे.
बात एक दिल, हाँ, एएनआई पे कि यूपी पुलिस, दिल्ली नोएडा पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है. उसको नोएडा पुलिस ने रिट्वीट करते हुए लिखा कि ये गलत बात है, आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं. और इसको हमारे जो एएनआई के एडिटर है उन्होंने भी शेयर किया और लिखा था सेव नोएडा, ऐसे करके उन्होंने रिट्वीट करते हुए लिखा. कई सारे और लोगों ने लिखा, बाद में उनको ट्वीट डिलीट करना पड़ा. तो ये हुआ. तो इससे बड़ा बिजार क्या होगा कि एक न्यूज एजेंसी जिस पे सैकड़ों चैनल, सैकड़ों मीडिया संस्थान आधारित है, वो इस तरह की खबरें कर रहा है और ऐसे दौर में.
राइट, दैट्स ट्रू. अनुमेहा, वुड यू लाइक टू गो नेक्स्ट?
Yeah, no, I agree with him that even for me, it was quite a surprise to see that UP police is having to fact check Zee News and ANI, that now it's reached a point where, you know, Uttar Pradesh police, which is not really, which has been criticized a lot for all the violations they do for civil liberties and people's rights, now even they are having to, and it's also criticized for being communal, even they are having to step in. Though I think maybe it has to do with them anticipating some international criticism. WHO has said that Indian government should not be releasing names of patients or categorizing patients into religious or ethnic lines while releasing data. So perhaps they're anticipating.
Yeah, probably. Just playing safe. Pratik, what about you?
Mere hisab se, I think ki picture of dinosaurs in Bangalore, real or not, we need to find out. Republic ne ये बिजार न्यूज ही, अजीब सी बात है. डायनासोर के बारे में मतलब न्यूज पढ़ने को कह रहे हैं कि अगर बैंगलोर में डायनासोर असली है नकली, मतलब इतनी, जब इस वक्त मतलब इतनी फेक न्यूज सर्कुलेट हो रही है इतनी जरूरत से ज्यादा, मतलब भले आप फेसबुक पे जाए या व्हाट्सएप पे, तो ये लोग इसमें डायनासोर और ये इस तरीके की मतलब बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं कि बैंगलोर में डायनासोर मिले. अभी से अगर मतलब 8 न्यूज ऐसी सर्कुलेट हो रही है जो फेक है व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया.
हाँ प्रतीक सर, मैं कह रहा था रिपब्लिक और ये अमित मालवीय जब फैक्ट चेक की बात करते हैं ना फेक न्यूज की, तो मुझे हंसी आती है। मतलब ऐसा ही हुआ कि मैं जाके क्रिकेट के क्रिकेट एकेडमी खोल लूं और मैं कहूं कि मैं तो विराट कोहली तैयार कर दूंगा। मतलब फेक न्यूज की बात कौन कर रहा, अमित मालवीय जिनका ट्विटर पे फेक न्यूज ही होता है।
एक्चुअली वी हैव डन अ या आयुष हैड डन अ रिपोर्ट आल्सो ड्यूरिंग द रायट्स राइट अबाउट actually before the riots, just before the riots, about Amit Malviya spreading fake news.
नहीं नहीं वो आपने देखा होगा आयुष की जो स्टोरी थी कि 500 रुपए लेके शाहीन बाग में महिलाएं बैठती आयुष ने उसको ऑल्ट न्यूज़ में मिलकर उसे ब्लास्ट किया।
जी okay, so my bizarre news is not from India, Basant.
Again.
Yes, again. So in Hanoi, in Vietnam's capital, a chef started selling Corona burgers. So they say that if something scares you, then you should eat it. That's the theory that he's going by. And he's made these burger buns in the shape of coronavirus. It looks very creepy. And yeah, that is my bizarre news.
अरे, and people are actually... पश्चिम बंगाल में भी मिठाई, पश्चिम बंगाल में भी मिठाई मिल रहा है, कोरोना मिठाई.
Oh, yeah, so that was quite bizarre.
No marketing.
Right. People are naming kids also.
हाँ हाँ यही यही मैं कहने वाला था। मध्य प्रदेश में एक आदमी ने अपने बेटे का नाम लॉकडाउन रख दिया, आज की खबर है।
पिछली बार भी तो
आपने आई थिंक आया था ना कि शायद उत्तर प्रदेश में किसी ने अपने बच्चे का नाम कोरोना रखा है।
राइट राइट या
कवर कर चुके हैं।
Yeah. Now let's get to the ground reports. Anumeha, we will begin with you. It was a brilliant report that you did on Bhilwara. Listeners, for those who haven't read the report, Anumeha did a report from Bhilwara district in Rajasthan. It was the first district in India to go under lockdown. And it was, I think it was the worst, one of the worst hit districts in Rajasthan, right?
Yeah. So Rajasthan went under lockdown on March 21st, which was 4-5 days before the rest of India. And Bhilwara district especially, they were anticipating some community transmission. So we've tried to focus on that district in this report, though it was based largely on audio interviews because I couldn't travel there. The district had been sealed. But yeah, I managed to get interviews with some workers who were stuck there and what the and also spoke to the district collector and workers who were stuck there on what was going on.
Right. And Anumeha, can you share with us some initial impressions from the people you spoke to, the workers and the officials?
Yeah. So initially, I think one of the main concerns there was that they started finding the first cases of transmission among a private hospital. There's a very popular private hospital there, the Bangar Private Hospital.
Yes.
And the government detected 3 doctors and 3 nurses from this hospital positive with COVID-19. And then they realized that in the previous 10 days, these hospital staff had examined almost 6,000 or come in contact with almost 6,000 patients from 13 of Rajasthan's districts and 39 patients from outside Rajasthan. So the scope for community transmission was a lot. And I think one more issue was that Jaipur and Junjunu also had a higher number of cases. But they were all traced to people who had traveled abroad. In Bhilwara, in these hospital staff's cases, at least they were not able to find an immediate link to who had gone abroad. So it could have been a patient who had come to the hospital with pneumonia who had COVID and they didn't realize it. Or one of the doctors had contacted it through meeting somebody in a resort or so on Holi is what was being suspected. So, but because they were a hospital and such a huge number of people congregate in a large private multi-speciality hospital, the scope for community transmission was really huge, and this district was put under lockdown on March 21st.
Right.
So when I spoke to them, one of the major impressions I was getting was, they were really far into an emergency compared to the rest of us around that time, which was March 27th or so on. We were also hoping to do this report that it may maybe give us an insight of where the rest of the country can go if we go in this direction, if community transmission worsens. Since then, there's been some good news that after March 30th, Bhilwara has been able to control the spread a fair bit. In the 8 days between March 30th and April 6th, they found the cases had increased by one. So
yeah, 27. I think last 5 days there have been no new infections, if I'm not wrong, right?
Yeah, I think till April 6th, like for a week between March 30th and April 6th, the cases went up by only one. And then of the 27 that were ill earlier, 17 were cured,
right,
and 13 were discharged. And they had, they've already had to take some extreme steps.
Right. I was just asking you, Anumeha, I mean, compared to the national lockdown, how different was this lockdown that was implemented for the first time in India? Like, was it way more stricter? I mean, here right now also, for example, in Delhi, grocery shops are open. You can go out and get groceries and all. But what was the situation there at that time?
So around that time, what the collector, Mr. Rajendra Bhatt told me, Ravindra Bhatt, I think, told me at that time was that they already had about 3,000 teams that had who had gone household to household. They've almost surveyed 6 lakh people. They've tried to contact as many families as possible. They had placed policemen outside people's houses to stop any movement at all. And other major development was that under the Epidemics Act, the district administration took over all private hospitals, all private hotels. They converted a large number of these hotels into quarantine facilities. About 1,500 people were placed in quarantine facilities in what used to be private hotels. I don't think we in the last few decades have ever seen the state taking over all resources at its disposal to control the spread of the epidemic. And so the current numbers, at least as of right now, they seem to have been a bit successful in controlling the transmission as of now. But it's also a textile. Bhilwara is a textile city. It also has a mining industry. It has a brick industry. So there are a large number of workers in this. In the same district, it has a population of 24 lakh. So, which I think like more than half are BPL. So there was so as far as that is concerned, it's a little patchy actually, like whether food is reaching people, whether really they're able to access essential services. I think there the district administration was trying, but I'm not fully sure if it's really completely comprehensive when it comes to food security for everyone.
Right. I mean, I think Rajendra Bhatt said that they've screened almost 2.5 to 3 million screenings they've done. And they went door to door and they were serving and testing people. If they could do that, why couldn't they make sure that, food was available to these people? Because a lot of people that you spoke to, these daily wage workers, they didn't have food and they didn't have money. Where do you think the authorities faltered in planning this?
One of the causes could be like there's some hint one can get from what some of the people who were managing the control room helpline were sharing with me was that actually this is a non-profit organization which runs a labor line helpline, and this has been converted to COVID relief for this period. They said they were getting almost 400 calls daily for food, for other issues such as employers are firing workers or telling them that wages will be cut. And so there was a lot of economic and social insecurity around that. This helpline, which was for the entire state, they were saying that when they are trying to pass on the information to the Bhilwara local staff, sometimes they are encountering resistance. I think like a survey team may have gone better equipped. Perhaps the others who were being tasked to deliver food or ration, state government, the district administration said they had ordered 1.3 lakh masks for everyone. But perhaps this personal protection equipment may not have reached everybody. In the absence of that, there may be issues of people fearing for their own safety, lacking full information. Certain pockets are really remote. It's a mining district and, there are quarries and this thing in like pretty far in the rural areas. So not all of it probably would have reached. I spoke to someone today too before our podcast to see where things were when it came to food security. So there was one good story. One of the things we had reported, the collector had responded pretty quickly and had got ration delivered actually to 200 families who were stuck in some brick-ins. Since then, they have ordered employers to provide food. What some of the social activists were concerned about was that if employers of these brick-ins are providing food, they will deduct that against the wages that the workers would have otherwise got.
Right.
So in a way, it will become a cost to the workers themselves, which is not something that should be happening. And another industrial worker who was stranded then, when I spoke to him today, he said still no one had reached. So I've actually resent a message to the collector saying this is the phone number of someone who's been asking for help in case maybe if you're any of your team is able to reach. And in some rural areas, what people said was they managed to cooperate amongst themselves for 2-3 panchayats. They pulled in money, like one of the sarpanches took initiative. They pulled in money and they have managed to get 5 kilo each of atta delivered, shared between all households in like several villages there. So they've been able to help themselves in that way. Like the slightly better off people in the village have pulled in more money and everyone has contributed what they can to tide over for the immediate this thing. But they told me that it's only 5 kilos, which will again not last probably until...
Right. So looking back, Anumeha, it's been a week, maybe 2 weeks since you did this report. How do you think it was handled looking back now? Because you know, there is talk of the Bhilwara model being replicated in the rest of the country. You know, since they've not reported any infections in the last 5 days, do you think it's feasible?
I think there may be some lessons there for sure. I also found the district administration fairly receptive and willing to listen, or even willing to take phone calls and be responding with information to even like someone like me. I'm calling from Delhi and saying, I'm doing a report. Can you comment on these aspects? I found a certain flexibility and receptiveness among them just in interacting with them. And they were putting in all their energies as much as they could. And also, one of the good things Rajasthan government has done is they have not restricted from the beginning. Ashok Gehlot said, the chief minister said, that food relief will not be restricted to those with ration cards, but will be available to anybody on the basis of need.
Which
is a very significant step and which can really alleviate hunger in the short term. I think that may be something to think about for various state governments to not, like, what are different ways that it should not be limited to only those with ration cards.
Yeah, for example, even in Delhi, I think you did a report from Delhi also about daily wage workers. And I think ration card is a huge issue. I mean, even the help in my house, she was telling me about how she comes from Jhansi and her ration card is from there. So she cannot get any food here, even though the government says that food is being distributed. How do you think Delhi government is doing compared to Rajasthan?
So Sigda, you're right to say domestic workers are among the most vulnerable right now, because of course they all work without contracts. Often they are migrants. Yes. They're living in slums and so on. And if factory workers, domestic workers, they are, and sweepers, construction workers, they are a majority of those who are right now facing food insecurity.
Exactly.
Delhi government has Delhi has a population about 1.93 crore, of which it provides ration to about 40% of the population, which is also the 2011 population, which is 9 years later, obviously more than what it was earlier. And but whereas the division of the ration card is still based on the older estimate of the census, the 2011 census. Delhi government also did a good thing in terms of being pretty quick. I think on March 25th is when they issued their first notification saying they will enhance food rations from 5 kilos to 7.5 kilos. So it was among the first governments to announce that relief. That was helpful. And since then, they've also realized that there is an issue for sure, that there is still a large, like maybe it could be lakhs. I think one of the things to understand is the National Food Security Act, under which the public distribution system functions. It provides for food ration, subsidized food grains for about 67% of the population of the country. But this varies from state to state, whether the population is more urban or rural. In what it sort of broadly tries to target for all over India is 50% of India's urban population and 85% of India's rural population is entitled to subsidized food grains. In a lot of the cases, what happens is the family which has stayed back in the village keeps the ration card, and your ration and your entitlements are based as per what is the detail provided at your village level. But once you move to the city to work, and also because a place like Delhi will have a higher overall income per capita, so it will appear like a richer state when statistically. Its coverage, actually, that's why it's at 40% of the population. A lot of the population which is poor manages to avert any food problems or any of their needs that they need to meet by working on a daily basis, whether it's at construction sites or whether it's lifting loads and so on. But in a crisis like this, when they neither have a ration card, nor can they access their work site, nor are they their employers responding to them, or nor do the employers take any responsibility for them, in that sort of a situation, like you have lakhs and lakhs of people who may be stranded in Delhi right now, who may be facing a question of how to feed their children and their family members on a day-to-day basis. So Delhi government, Delhi chief minister estimated that there could still be about 10 lakh people who will need food, who will need dry rations besides the cooked food they are providing at government schools and at night shelters. Social activists like the Delhi Rozi Roti Abhiyan, they estimate this could be up to 60 lakhs. They also point out that though news often comes from places like Uttar Pradesh, Jharkhand of malnutrition and starvation, even in their pockets in Delhi where extreme hunger and starvation may exist. There was a hunger death in 2018, like three children died. Their father was a rickshaw puller. His work had been disrupted. I think he was also going through some illness. And three girls below 10-year-old died in Mandavli in one area. So it's not that Delhi is not prone to these kind of crises and people may not be facing this like an extreme extreme crisis of economic and food security and their nutrition. So Delhi government has said that people who don't have ration cards will be allowed to go online and get an e-coupon and generate and put in an application, provide photographs online, provide their Aadhaar details online. I think there are some gaps in this. Because you're already then limiting it to people who have a smartphone. You know, you're assuming that someone will have to go to a community worker who will then do it for them. You need like a good internet connection. You need a smartphone. Actually, yesterday I was in Mundka area across this Nagar Nala. And that's what people started telling me that iske liye bada phone chahiye. Jiske paas bada phone hai, wahi apply kar payenge. Bahut logon ke paas chote phone hote hain, feature phone hote hain, jin internet nahi hai. आप उनको इस भरोसे छोड़ रहे हैं कि वो किसी सामाजिक कार्यकर्ता को ढूंढेंगे, वो उनके लिए एप्लीकेशन डालेंगे, उनके पास आधार होना चाहिए, उनका आधार यू नो दिल्ली का होना चाहिए, ये इस तरह की चीजें. एक्चुअली नहीं, आई थिंक ये उन्होंने नहीं बोला कि आधार दिल्ली का होना चाहिए, लेकिन आप ऑलरेडी एक यू नो
या एंड यू आर आल्सो लाइक प्रमोटिंग मूवमेंट राइट व्हेन यू आर टेलिंग पीपल टू स्टे एट होम, नॉट मूव अराउंड टू मच. आई मीन पीपल हु कांट डू दिस, दे विल हैव टू गो आउट, दे विल हैव टू मीट पीपल टू गेट दिस डन.
Don't think that actually when one goes to low-income localities, it's not that people are entirely locked up like in some of the other South Delhi or Central Delhi colonies, because slums wagera mein, I think ghar bhi itne chote hain aur kahi logo ke ghar hi, they are like one room small places. People are staying in, but they are frequently outside on the roads as well, because the structure of housing is such that, you know, they are very small tenements, they are slums. People work and live in the same area jahan pe maybe if they are waste pickers, wo wahi pe ek jagah kachra sort out kar rahe hain, ek jagah wo rehte hain, fir wo thodi der baar road pe aate hain, of course, you know. So aisa nahi hai ki log bilkul hi band hain, but overall matlab ek cheez samajh mein aati hai ki unhone acha kiya, they've thought about it, that they should think of people without ration cards. And this is one step that okay, you can apply online, but it of course in a country like India you can't leave it only to online and those with digital literacy.
Exactly. Right. So, Anumeya, I mean, my last question, what are your major, I mean, both from Rajasthan and Delhi, what are your major, what were some things that you were very, like, impressed by as a reporter and your biggest criticisms of both the states, how they're handling the pandemic?
So, I don't have so much criticism even. I'm, you know, it's, I think everybody, you know, is in a situation where, I mean, it's a fast changing situation. Everyone's trying to make decisions, assuming information. I think in both these states, they are ruled by opposition parties compared to the national party in power. Both states have shown certain sensitivity, at least when it comes to food relief. Both states were also, both Delhi and Rajasthan were actually, they announced their 1 week lockdowns before the central government, Delhi national government. The central government has announced a 21-day lockdown, but both Delhi and Rajasthan had announced that they will lock down for 1 week. So it shows they were already thinking on their feet. They were already thinking that these measures will be needed. And we don't know if this was left a bit more to states, how it would have been handled. Right now, what we're seeing is states were already doing something. Then center's lockdown came in. Then states have tried to respond to that. Center has made some provisions for relief. It's not so clear between state and center what would play out what, like, you know, August, if the center has said that we'll double food rations for 2 months, if the state had already given an even more generous provision, it's not clear which one should kick in. So some of these things should be ironed out further. The fact that your ration cover is already very limited, you know, people have already been arguing for a long time that look at Chhattisgarh, look at Tamil Nadu, they universalized food rations. And that's a much better way of going. Those kind of drawbacks are right now coming to the fore, that when you've already limited food security for a certain population, what happens to the rest of them? I think we also don't know exactly in great detail what kind of help and training are health workers getting, frontline health workers. So sure. More of that information would be helpful as well. This is also something, it's not clear right now, how long will it go on? Will there be phases when it will be lifted a bit? Then what happens? When you lift it, if there's a sudden rush to banks for people to withdraw cash, especially in rural areas, what sort of a situation would that create? Banks already feel overwhelmed. That can also lead to crowding and those sort of issues. Mm-hmm. One of the, that's there. Then, you know, you made an entire system based on these biometric applications. So now a lot of them become completely useless. So what sort of thinking, a lot of these governments should be anticipating some of these problems perhaps, which they are not always doing. Like one problem happens, then they solve it. And then another happens, then they try to solve it. But perhaps one needs far more like thinking ahead, which maybe some of them are doing, some aren't.
Right. And my last question, because this is News Laundry, what is your impression of how media has been covering, Indian media has been covering the pandemic? Print, electronic, both, and digital?
I don't really consume a lot of TV news, so maybe I'm not the best person to speak about it. Of course, there is a concern at what they are highlighting compared to what they could be highlighting. In terms of the issues affecting everyday what people are facing, like we are not getting to hear that so much of that, but a far more focus on one kind of going on repeating this stereotyping of one Muslim community, one this thing. And till the time workers were on roads walking back home, they were providing some coverage or some visuals. We don't know what has happened after people reached home. What happened?
Right. No follow-up.
And for sure, frontline, there's some discussion otherwise of hospital beds and ventilators. Maybe we should be asking far more detailed questions about contact tracing, the rights of frontline health workers, the safety and health of frontline workers.
Right. Okay, thank you so much, Anumeha. Prateek recently did a report on the attack on health workers in Indore and how WhatsApp messages perpetrate fake news and spread paranoia. Prateek, can you aap hame bata sakte ki aap aapne kya matlab report kya kiya tha apne report or what were your impressions? What really happened? Yeah.
देखिए जब ये वो जब वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इंदौर में वो टाटपट्टी भाकल का जो इलाका है
जी,
तो लोग पत्थर वगैरह मार रहे थे वो डॉक्टर्स पे, पुलिस वालों पे, तो काफी मतलब उनकी हरकत को लेके बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था और वो होना भी चाहिए बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है अगर कोई इस तरीके के अभी काम में डॉक्टर्स हैं या पुलिस वाले हैं जो भी हैं इस तरीके से किसी को अटैक नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके पीछे मतलब अभी ये जो देखिए मतलब ये जो फेक न्यूज इतना सर्कुलेट होता है तो उसके पीछे कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है फेक न्यूज किसी को, तो ये इसमें एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है ये इंसिडेंट उसका। तो ये जब ये हुआ था तो ये जिस जब ये अटैक हुआ तो असल में इसके पीछे की बैक स्टोरी है कि अब ये अब वहां पे असल में 25 तारीख को वहां पे एक उसी इलाके में एक आदमी रहते थे तो उनको उनको ये निमोनिया के सिम्टम्स दिख रहे थे, उनको वहाँ इंदौर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए थे, तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे एडमिट नहीं कर सकते, आप उनको वहाँ पे एमवाई करके हॉस्पिटल इंदौर महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल एक जनरल हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे लेके गए उनको और उनको वहाँ पे एडमिट किया गया। तो जब उनको वहाँ पे उस अस्पताल में एडमिट किया गया तो वो 25 को वहीं पे थे और उसके दो दिन बाद उनकी डेथ हो गई वहाँ पे। ठीक है, तो उनकी जब डेथ हुई तो उस वक्त उनकी जो उनके बॉडी थी उनके फैमिली को हैंड ओवर कर दी गई थी, तो बॉडी वगैरह उन्होंने ले लिया और उसका जो भी है मतलब जब तक लॉकडाउन हो चुका
नॉर्मली हैंड ओवर कर दी
नॉर्मली नॉर्मल हैंड ओवर किया था, लॉकडाउन हो चुका था और उनको पुलिस की परमिशन ने दी कि भाई कुछ लोग की मौजूदगी में आप उनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। तो उसके दो दिन बाद हुआ ये कि वहां पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम आई और उन्होंने बोला कि उनकी डेथ जो है कोविड की वजह से हुई है। ठीक है, दो दिन बाद
उनको बोला, पता चला
हाँ दो दिन बाद, तो उन्होंने बोला कि आपको उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ, तो उन्होंने बोला ठीक है, फैमिली ने कोऑपरेट किया। उसके बाद उसी दिन शाम को रात को मतलब उस वो जिस जहाँ रहते थे उसके अगल बगल की कम से कम 20 फैमिलीज को उन्होंने साथ में लेकर क्वारंटाइन कर दिया। ठीक है, अब उसी उस वक्त वहां पे खजराना करके इलाका है इंदौर में, तो वहां की ऑलरेडी एक फैमिली जो क्वारंटाइन में थी उनको उन्होंने एक वीडियो बनाया अपना, ठीक है, उस फैमिली का नाम मैं बता देता हूँ या नहीं बताऊ, मतलब ठीक है नहीं बताता हूँ, वो क्या रिपोर्ट में तो है ही, बट तो उन्होंने अपना वीडियो बनाया और वो वीडियो में मतलब बहुत ही बहुत ऊटपटांग बातें करने लग गए थे उस वीडियो के अंदर कि हमें 5 दिन से यहाँ पे
मैंने देखा हाँ।
हुआ है और वो तमाम चीजें, वो पूरी फैमिली का, वो 8-10 लोग का उन्होंने बना दिया और उसमें वहां पे भी बैकग्राउंड में कोई बोलने उनसे बोलवा खुद के उनके लोग बोल रहे हैं या कि अरे मुसलमानों का मतलब एक ऐसा बोलते ना एक वो वीडियो इस तरीके से क्रिएट किया कि पैनिक क्रिएट हो जाए उसको लेके, ठीक है, तो वो मतलब आधी अधूरी बातें उसमें वो भी बोल दिया कि हम मुसलमान, एक एक लफ्ज बोल दिया गया उसमें, ठीक है, उसमें ये बोल दिया कि हम फंस गए हैं यहाँ पे। अब उस वो जो मोहल्ला है टाटपट्टी भाकल, वो इलाका में ज्यादा लिटरेसी है नहीं, ठीक है, मतलब वहाँ के
मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, राइट,
हाँ, तो नहीं मतलब वहाँ पे ऐसा है कि कुछ गलियां मुस्लिम पूरी डोमिनेट करते हैं, कुछ गलियां हिंदू, मतलब काफी वो सेंसिटिव इलाका है वैसे, ठीक है, काफी सेंसिटिव है वो एरिया बहुत। अब हुआ वहां पे ये, तब ये वीडियो वहां घूमने लगा, ठीक है, उस इलाके में, और अब इन वहां उस जो मोहल्ले के लोग थे उनको ये पता नहीं था कि भाई वो जो फैमिलीज हैं, जो 20 फैमिलीज हैं वो कहाँ गए, ठीक है, और उनको ले गए थे पर्यटन करने ले गए थे। अब इसी और उसी वक्त एक मैसेज सर्कुलेट होने लगा मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे कि भाई ये मुसलमानों के लिए ये कोरोना एक साजिश है,
हाँ,
और उसमें लिखने लगे कि मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है, कोरोना के नाम पे मुस्लिम बस्तियों से मुसलमानों को लेके जाया जा रहा है, फर्जी पॉजिटिव रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं, उनको आइसोलेशन में रख रहे हैं, मतलब ये उसके वर्ड्स है, ठीक है,
फिर अस्पताल में ले जाए, कोई टॉक्सिक इंजेक्शन दे रहे हैं, ऐसे कुछ
अस्पताल में नहीं ले जा रहे हैं उनको, ले जाकर इंजेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से मरने की कगार पे पहुंच जाए तो उनको जहर का इंजेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है, और समझ जाओ और ये सब तमाम चीजें कि मतलब कोई भी पुलिस वाला या डॉक्टर आए तो उनको लेके मत जाने दो।
सो दिस मैसेज वेंट वायरल, ये मैसेज वायरल हुआ,
दोनों
और वो वीडियो भी और वो जी
भी वायरल, वो भी वायरल, उसमें तो बोल रहा है वायरल, वो ये दोनों चीजें हो गई दबा के पूरी तरीके से वायरल
जी।
अब वहां के मोहल्ले में मतलब ये सब चलते चलते अब उनको लगने लगा कि भाई ये, अब जब वो लोग ये पहुंचे वहां पे ये डॉक्टर तो एक स्क्रीनिंग करी भी इन्होंने, और ऐसी बात नहीं है वो पहली दफा वहां पे गए थे, इसके पहले भी मतलब थोड़ा मतलब जब ये शुरू हुआ था इंदौर में, ठीक है, तो वो बेसिकली जब वो वहां पहुंचे तो वो मतलब वहां पे एक बुजुर्ग एक लेडी थी तो वो सस्पेक्ट थी उसमें,
राइट,
तो उनको उन्होंने ले जाने की बात कही, तो जब वो उनको ले जाने की बात करने लगे तो वो वहां पे वो बोले कि नहीं हम लेके जाने नहीं देंगे इनको, आपको जो करना है यहीं पे करो, तो उन्होंने बोला, तो पुलिस तो वहाँ तहसीलदार भी थे, उन्होंने बोला कि भाई इस तरीके से नहीं हो सकता, वो सस्पेक्टों को लेके जाना पड़ेगा, तो वहां पे लेके हो गई बहस और वो लोग ऑलरेडी जो इसमें थे मतलब ये तो डर तो मतलब ये जो मैसेज की वजह से तो दिमाग मतलब उनका इस तरीके से हो ही गया था, और उस दौरान वहां पे भी मतलब कुछ इस तरीके के लोग थे जिन्होंने इसको पूरा इंस्टिगेट कर दिया, तो उन्होंने सीधा पुलिस पे और डॉक्टर्स पे अटैक करना शुरू कर दिया,
राइट,
ये उसके बाद जबकि ये मैसेज जो सर्कुलेट किया गया था, दो लड़के हैं उनका नाम एक आरिफ और एक दूसरे का नाम कुछ और है, नाम भूल रहा हूँ मतलब वो मेंशन रिपोर्ट में, तो वो उन दोनों को ये वो दो इस तरीके के व्हाट्सएप ग्रुप चलाते थे वहां से वो सर्कुलेट कर रहे थे, हालांकि अभी भी उसका जो मेन ओरिजिनेटर पकड़ा नहीं गया है।
तो प्रतीक, हाँ, आपके रिपोर्ट में आपने मेंशन किया था कि पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया और उनपे NSA लगाया है, मतलब they've been charged under NSA, right?
तो उसमें 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और उसमें 4 लोगों पे NSA लगाया गया, तो ये 4 जो हैं इन लोगों ने पूरा मतलब भड़काने का काम इनने किया था वहां पे कि मारो करके इनको और ये, और पुलिस से जब मैंने वो DIG वहां पे है हरिनारायण चारी मिश्रा,
हाँ जी,
उनसे मैंने पूछा था कि इसमें NSA क्यों लगाया आपने, बाकी भी आईपीसी के वो धारा लगा सकते थे,
हाँ, हाँ।
तो बोले नहीं NSA लगाना इसलिए इसमें जरूरी है कि ये सिचुएशन है बहुत इमरजेंसी की, हाँ। अगर ये सोचिए अगर ये इस तरीके से उन्होंने जो हरकत की है अगर इसको लेके अगर पूरे डॉक्टर्स में दहशत फैल जाती है वो तो बस्तियों में जाना ही बंद कर देंगे, अगर बस्तियों में जाना बंद कर देंगे तो फिर वो कैसे इस चीज को हैंडल कर पाएंगे हम लोग, तो इसलिए मतलब इसमें मतलब स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, और इसीलिए हमने इन चारों पे भी ये चारों ने पूरा इंस्टिगेट किया था वहां पे माहौल, तो इसलिए मैंने से लगाया। और दूसरी बार ये वो जो वीडियो था ना वो मुल्तानी फैमिली वाला
जी,
वो उसने बाद में एक और वीडियो रिलीज किया, उसमें वो बोल रहा है कि
मतलब वो मतलब ऐसा नहीं था और वैसा नहीं था, होता है और पांच दिन का नहीं होता है, मुझे समझ में आ रही है। लेकिन वो मतलब अपने देश में प्रॉब्लम ये है कि गलत चीज बहुत जल्दी घूमती है और सही चीज थोड़ा सा उसका इतना असर नहीं होता है। वो तब तक उसका वीडियो वायरल नहीं हुआ और ये हो गया, इस चक्कर में पूरा ये। और जिन लोगों ने किया है, और जिन लोगों ने किया है ना, तो वहाँ के लोग खुद उसकी खिलाफत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब बहुत ही घटिया हरकत की है इन्होंने और इनकी वजह से हमारे पूरे मोहल्ले में एक मुसीबत पैदा हो गई है इनकी लोगों की वजह से। तो वो मतलब जो भी उनकी बहुत क्रिटिसाइज किया, ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग उनकी इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं या मतलब ये कर रहे हैं। जो लोगों ने किया वो बहुत घटिया हरकत की है। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, मतलब ये पॉडकास्ट के जरिए बहुत लोग बोल रहे हैं, हमने जो रिपोर्ट की थी कि हम लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, यहाँ कोई किसी को जस्टिफाई करने के लिए बैठा नहीं हुआ है। वो इंसिडेंट हुआ है, एज ए रिपोर्टर मेरा काम है रिपोर्ट करना, मतलब मेरा कोई हिंदू मुसलमान और ये सब कोई सब कोई मतलब नहीं है। मेरा काम है रिपोर्ट करना, वो इंसिडेंट को रिपोर्ट किया गया है
और उसमें वो जस्ट रिपोर्टेड फैक्ट्स
एग्जैक्टली। और जो उन लोगों जिन लोगों ने गलत की वो डेफिनेटली गलत की। तो वो जो अपने देश में प्रॉब्लम क्या हो गया ना, अगर कोई अगर इस तरह की रिपोर्ट करे तो वो फिर उसको राइट विंग ये करने लगता है, या अगर उस तरह करे तो लेफ्ट विंग करने लगता है। वो लोग फैक्ट्स और रिपोर्ट
राइट। बसंत, हाँ, सो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि देखिए प्रतीक ने जो रिपोर्ट किया, ओके, आई मीन ऑल ऑफ दिस फेक न्यूज वाज स्प्रेड इन दिस पर्टिकुलर एरिया, है ना, आपको क्या लगता है कि इसका कुछ रिलेशन है जो मतलब पूरे देश में चल रहा है, ये कोरोना वायरस के पहले जो माहौल था उससे कुछ लेना देना, दिल्ली में जो कुछ हुआ आपने काफी रिपोर्ट किया? और
नहीं नहीं, देख होता है ना कि ऐसा
डर जो है,
हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग ये सुनते थे कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनमें ये अफवाह फैला दी गई थी कि पोलियो का ड्रॉप लेने से जनसंख्या नियंत्रण करने की कोशिश है। तो हमारे इलाके में कई जगहों पे, सिर्फ बिहार में नहीं, कई प्रदेशों में लोग अपने बच्चों को, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, पोलियो ड्रॉप इसलिए नहीं पिलाते थे कि उनको डर था कि इससे जनसंख्या नियंत्रण की कोशिश हो रही है, और एक बड़ा अफवाह था। तो ऐसा इसके लिए फिर कई सारे विज्ञापन लाने पड़े, इतने सारी बातें सरकार को करनी पड़ी, तब जाके लोग पिलाना शुरू किए। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो अफवाह फैल जाता है और लोग उसको मानने लगते हैं। तो इसका मुझे नहीं लगता कि बाकी चीजों से कुछ लेना था। फिर ये जमाती उमाती वाला पूरा मामला हुआ, इन सब पर लेके ऐसा अफवाह फैल गया।
ये तबलीगी वाला जो हुआ ना मैटर, ये इस मतलब ये तबलीगी ने जो वो तो हरकत गलत करी है उन्होंने, उसमें मतलब शक ही नहीं है। लेकिन उसके बाद जो फेक न्यूज सर्कुलेट होने लग गया ना बहुत ज्यादा, तो वो पर्टिकुलरली उसमें टारगेट करने लग गए। क्योंकि अभी हर कोई आप किसी से ही बात करोगे ना, यार ये तबलीगों और एग्जैक्टली 1200 का फिगर अगर सिर्फ उनका है पॉजिटिव होने का, जो अभी भी बहुत हो रहे हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल धारावी में जो हुआ है, वो जिस बंदे से वो इन्फेक्ट हुआ है वहां पे जो स्लम्स में, वो भी तबलीगी जमात का ही है। तो लेकिन अब हो क्या गया, उसके चक्कर में कुछ इस तरीके के लोग हैं कि जो हर चीज में उनको मुस्लिम पूरी कम्युनिटी को टारगेट करने में लग गए, बजाय जो लोग
इंक्लूडिंग अ सेक्शन ऑफ आवर टीवी मीडिया।
हाँ, मतलब वो बहुत गलत बात है, मतलब इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर हाँ किसी ने किया है गलती तो उनको, जैसे वो अभी वो गौमूत्र पिला रहा था वो, मतलब वो महामूर्ख लोग जो मतलब वो बोल रहे थे कि ये भी के करोना चले जाएगा, तो सेम जैसे वो लोग हैं वैसे ये तबलीगी है।
एग्जैक्टली,
उनको क्रिटिसाइज करो, पूरी कम्युनिटी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते आप।
हमारा मीडिया ये क्यों नहीं समझ पा रहा कि दुनिया में जो मुस्लिम कम्युनिटी का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है वो बंद है, दिल्ली में सबसे बड़ा मस्जिद बंद है, जामा मस्जिद। तो फिर कम्युनिटी को टारगेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। और एक चीज मैं बताऊं, ये जब से नेशनल मीडिया की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर नफरत और बढ़ गई है सोसाइटी में, ये साफ दिख रहा है।
मतलब मैं यही कहना चाह रही थी बसंत कि इसके कारण, क्योंकि जो ये जो फैलाया जा रहा है लाइक बाय मीडिया आल्सो, राइट, मेनी न्यूज चैनल्स, पीपल लाइक सुधीर चौधरी एंड सो ऑन, दे've बीन डूइंग दिस कंसिस्टेंटली, है ना, तो इसका असर भी तो हो सकता है। मतलब मैं पूछ रही हूँ आपसे, आपको क्या लगता है कि दिस फियर इन द कम्युनिटी,
हाँ हाँ, इसको लेकर उनके मन में डर पैदा हो सकता है, जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, कि शायद हो सकता है मीडिया ऐसे दिखा रही हो या जिस तरीके से हमारे खिलाफ साजिशी हो।
जी,
लेकिन
जी,
सरकार बार बार तो मतलब सरकार के इतनी तो समझ होनी चाहिए कि कोरोना वायरस भारत में पैदा नहीं हुआ है, विदेश आया हुआ है, तो भारत के इसमें कोई संबंध नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल ना, अभी ये वक्त क्या है, वो अंग्रेजी में कहावत है ना, वो क्या बोलते हैं, यू शुड कॉल अ स्पेड अ स्पेड, मतलब जो चीज है उसको वही बोलो। मतलब अभी तुम यहाँ हिंदू मुसलमान करने के लिए बैठे नहीं हो, ये यहाँ पे अभी इससे ग्लोबल इमरजेंसी ये यहाँ पे तुम मतलब अगर कोई अगर तबलीगी ने गलत किए तो मुस्लिम्स को मतलब कुछ आना चाहिए बोलना चाहिए कि भाई ये गलत है उसको मतलब उसको डिपेंड करने का कोई सवाल नहीं उठता यहाँ पे किसी का या अगर कोई इस तरीके की हरकत है तो मतलब यार रिलीजन रिलीजन का सीन ही खत्म है यार एज अ कंट्री हम लोग को उसको देखना होगा और तभी हो पाएगा यार और गाँव और स्लम्स स्लम्स में स्लम सबसे डेंजरस सीन है अभी बता रहा हूँ मैं जैसे भी अनुमेय बता रही
थी
घर में
अभी घर में स्लम में पहुंच चुका है
वही हाल है
जी
वही बोल रहा हूँ ना जैसे पूना के मैं स्लम्स में गया था तो वहां पे इतने छोटे घर हैं कि मतलब आपके बाथरूम के बराबर उनका रूम होगा और उसके ऊपर मतलब छोटा सा एक रूम और होगा बस तो ऑब्वियसली वहां पे जैसे रह रहे हैं जहाँ माहौल है तो बहुत अजीब मतलब तो ये सब ये धर्म और ये सब ही खेल करने का ये वो नहीं है ये बहुत डेंजरस हो जाएगा और ये फेक न्यूज को कंट्रोल करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी
अफसोस की बात है कि नेशनल मीडिया बड़े बड़े एंकर फेक न्यूज फैला रहे हैं
जी जी एंड एक चीज और अगर इसमें अगर हम स्टेटिस्टिकली देखें जो कल आई थिंक परसों शोएब दानियाल की एक रिपोर्ट आई है कि जब हमें मीडिया बार बार बोल रही है कि 60% केसेस एक तबलीगी जमात के ग्रुप से थे एंड ऑल दैट तो वो ये बोल रहे हैं कि इस तरह से जब हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं एक तरह से हम ना एक परसेंटेज बता रहे हैं बिना डिनोमिनेटर के माने एक सिंपल मैथ का भी एक इशू है एक सैम्पलिंग इशू है उसमें यू नो अगर आप ज्यादातर वहीं से ही टेस्ट कर रहे हैं और बाकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं कर पा रहे हैं आप समझ रहे हैं जैसे कि आप एक एक ग्रुप के पीछे आप ऐसे पड़ गए कि आपने बिल्कुल ही जैसे सारा स्टेट की पुलिस लगा के आपने एक एक जना उस सेक्ट में कौन है नो जैसे हमारे अगर कोई ओशो रजनीश के आश्रम में कौन कौन थे वो आपने पूरे ढूंढ डाले लेकिन जो बाकी आपके लोग थे कोई नर्स कहीं पे थी उनके साथ क्या हुआ कोई और कोई मे बी अगर मे बी कोई गरीब मजदूर थे वो बिहार लौटे वो कितना लोगों से मिले वो क्या आप इक्वली डिटेल तरीके से आप टेस्ट कर रहे हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर पा रहे हैं यू नो वो एक सवाल बनता है कि आपका सैंपल क्या है
एंड इवन इनिशियली एक्चुअली यू आर राइट अनुमेहा बिकॉज इनिशियली द नंबर्स कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आवर नंबर्स वर क्वाइट लो एंड इट्स राइट आफ्टर दिस निजामुद्दीन फियास्को द नंबर्स स्टार्टेड शूटिंग अप every day and it was all somehow related to tablighi jamaat
maybe the numbers may be far more right like aap ek site ko aap bahut detail mein trace kar rahe hain
exactly
I don't know jaise punjab mein bhi unka ek kuch sikh mohalla hua tha uske baad wo 20,000 logo ko unhone bola tha hum watch mein rakh rahe hain par hame nahi pata kyunki itna zyada focus sirf ek pe hi ho gaya hame nahi pata ki baaki cases mein kya itna energy laga ke contact tracing kiya gaya jitna aap
जिस तरीके से मीडिया ये बता रहा है जैसे कि इतने केसेस आए इतने तबलीगी बिहार में इतने केसेस इतने तबलीगी से जुड़े ये समझ में नहीं आ रहा कि आप केस बताइए ना आप क्यों जानबूझ के एक एजेंडा सेट कर रहे हैं कि नफरत और बढ़े मैं आपको बताऊंगा हैरानी होगी मेरे एक रिलेटिव है डॉक्टर है उनको एक हमारे जानने वाले ये कह रहे थे कि आपके क्लिनिक में अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आए तो इलाज मत करिए क्योंकि वो हो सकते हैं प्रभावित मैं हैरान हुआ कि ये क्या आप सलाह दे रहे हैं
ये बहुत बात हो गई
इलाज कराने
का और ये भी कि कॉलोनी में भी लोगों को तंग किया आज मुझे एक मजदूर साथी का उनका फोन आया भिवानी से उन्होंने कहा गांव में हमारे यहाँ जो भी मुस्लिम परिवार है उनको बंद कर दिया गया है उनसे बात नहीं कर रहे हैं ये नहीं कर रहे हैं उस तरह की एक जब उस तरह का
ऑस्ट्रेसाइज्ड
जी और एक डबल स्टैंडर्ड की भी बात है यहाँ पे जब लोगों ने कि जो ये हमारे जो ऑफिशियल है लव अग्रवाल जब इनसे पूछा गया आर्मी या मिलिट्री फोर्सेज में कितने केस हैं तो उन्होंने कहा मैं ऐसे आपको अलग से नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे आर्मी का प्रिवेसी यू नो सोल्जर्स की प्रिवेसी हार्म होती है या उनके लिए हम उनकी प्रोफाइलिंग होती है या अगर उनसे पूछे क्या हेल्थ वर्कर्स में कितने केसेस हैं तो इसका जवाब सरकार नहीं दे रही है लेकिन आप पूछिए कितने केसेस मुस्लिम्स के एक सेक्ट में है तो वो आपको बता देंगे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप सिर्फ एक कैटेगरी का आप इतना डिटेल प्रोफाइल मेंटेन कर रहे हैं लेकिन आप अपने नर्सेज और डॉक्टर्स में कितने केसेस हैं वो आप नहीं बता पा रहे तो इट्स लाइक वेरी इंबैलेंस्ड इट्स यू नो अब हम सबका ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं
तो पॉइंट आउट करना तो बहुत ही गलत बात है लेकिन जैसे अभी आप अनुमेया बोल रही थी कि पर्टिकुलरली सिर्फ उनके पीछे ही सैम्पलिंग हो रही है तो मतलब मेरे को बाकी स्टेट्स का नहीं पता बट मैं महाराष्ट्र का बताता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे काफी जो तबलीगी जमात से जो निजामुद्दीन से लोग चले थे ना अब वो तबलीगी जमात के हो या कोई भी हो उन सबका डम्प डेटा निकलवाया गया है ठीक है उसका डम्प डेटा एक्चुअली आईबी ने निकलवा के हर स्टेट की पुलिस को फॉरवर्ड किया था तो महाराष्ट्र में उस डम्प डेटा में कोई भी हो रिस्पेक्टिव हो वो कोई भी हो वो मुस्लिम हो हिंदू हो क्रिश्चियन हो या तबलीगी का से आ रहे हो या जो भी निजामुद्दीन स्टेशन से चले हैं यहाँ की तरफ उन सबको उन्होंने लिया है और उनके ऊपर वो मतलब जो सबके साथ एक साथ वो कर रहे हैं मतलब चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे वो चीज मेरे को ऐसा देखने नहीं मिली, जो कि मे भी हो सकता है दूसरे स्टेट्स में पर्टिकुलरली वो उन्हीं का पूछे, मतलब विच हंटिंग टाइप है, जो भी उन्हीं के टेस्ट के बारे में बता रहे हो कि भाई इन्होंने किया इन्होंने किया, तो यहाँ पे वो एटलीस्ट वो नहीं है अभी फिलहाल, तो एक चीज है। और दूसरा पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करना, तो सबसे ज्यादा ये जो इसकी ये हुआ है बेसिकली न्यूज चैनल्स की वजह से, क्योंकि वो हरदम तबलीगी जमात ने ये कर दिया वो कर दिया, और फेसबुक पे इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से मतलब वो झूठी खबरें इतनी दिखा देते हैं, तो लोगों को ये लगने लग गया कि भाई जो मतलब जिन लोगों को नहीं पता है वो नहीं समझते भाई, वो बोलते हैं कि हाँ ये तो मुसलमानों की वजह से हुआ है, और उससे इतना खतरनाक सीन मतलब क्रिएट हो डेवलप हो चुका है कि वो मतलब
जी जी राजस्थान में एक उनके बेबी की डेथ हो गई क्योंकि वो भरतपुर हॉस्पिटल में गई, वहाँ डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया। आप मतलब आप कहने के बेबी के न्यू बॉर्न की डेथ हो गई कि उन्होंने कहा नहीं आप जयपुर जाइए आप मुस्लिम समाज से हैं, यू नो। एंड एक ये भी हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, मुझे वो भी लगता है कि नो बिकॉज आप मुस्लिम से पूछेंगे तो वो क्या सोचते हैं, कौन शिया है कौन सुन्नी है कौन तबलीगी है कौन किसी और से, हिंदू में आप पूछेंगे अलग अलग सब सेक्ट, हर चीज को एक क्लब कर देना, हर चीज को एक यू नो एक बहुत ही अजीब सा एक परसेप्शन है, हम समाज में परसेप्शन है, आई थिंक मे बी मीडिया जस्ट रिफ्लेक्ट द सेम। फिर वर्कर्स वगैरह निकल आए, एक और वर्कर इंटेलेक्चुअल है उनका ये कहना था कि जब लोग रोड पे निकल आए तो एक परसेप्शन बनता है कि स्टेट सबके लिए बराबर काम नहीं कर रही या उतना कंपैशन या उतना संवेदनशीलता सबके लिए नहीं है, तो उस बात का सवाल ना उठे उससे फोकस उठाने के लिए भी एक दृश्य बदलने की जरूरत होती है, और ये सब करने से दृश्य बदले जाते हैं, यू नो कि नहीं आप दूसरी चीज पे फोकस करिए, ये मत सोचिए कि इतने करोड़ करोड़ लोग रोड पे कहां से आ गए, ये कौन थे, अभी तक किसी ने इनका सोचा ही नहीं और पहले ही अनाउंस कर दिया, एक यू नो सो एक दृश्य बदलने का काम किया जाता है मीडिया से।
True. So let's move to Basant's report. We'll quickly discuss it. Basant, आपने रिपोर्ट किया है अभी रिसेंटली 3rd को, कैसे बिहार के अलग अलग जिलों से मजदूर जो गुजरात में फंसे हुए हैं और उनके बारे में बताइए और क्या हो रहा है वहाँ पे।
दरअसल जब हमने एक वीडियो स्टोरी की थी न्यूज लॉन्ड्री ने कि मैं ही उसको रिपोर्ट कर रहा था, जब दिल्ली से मजदूर बिहार जा रहे थे काफी संख्या, तो वहाँ हमने एक वीडियो किया था कि 8 मजदूर है जो साइकिल से बांका जिला जा रहे हैं, जो दिल्ली से 1400 किलोमीटर दूर है, भागलपुर शहर के बगल में पड़ता है बांका जिला, साइकिल से जा रहे थे, तो उस पे एक कमेंट आया कि हमारे पास खिचड़ी बनाने तक का चावल नहीं बचा, हम क्या करें। तो मैंने वैसे ही मैं कमेंट देख रहा था तो मैंने उसको उस बंदे को रिक्वेस्ट भेजा और मैसेज किया कि आप मुझसे बात करिए कि क्या स्थिति है। फिर हमने उनसे बात की, उन्होंने नंबर दिया, फिर मैंने उनको कॉल किया। तो अहमदाबाद से 30 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां पे एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी में, छपरा जिला पड़ता है, छपरा सीतामढ़ी यहाँ के काफी संख्या में मजदूर हैं। तो हम सबको पता है कि अहमदाबाद अभी हॉटस्पॉट बन चुका है, वहां पे काफी संख्या में मरीज आ रहे हैं जो 20 हैं अभी तक शायद। तो जब अहमदाबाद में वो लोग भी पैदल जाना चाह रहे हैं, तो वहां से काफी सारे लोग पैदल जा चुके थे, लेकिन उनके साथ ये हुआ कि जब अहमदाबाद में मामले बढ़ने लगे तो प्रशासन टाइट हो गया, तो निकल नहीं पाए और उनके पास राशन वासन खत्म हो गया था, और गांव की एक ऐसे जगह पे थे जहाँ पे बिजली नहीं आती है, उस गांव में जहाँ उनका कमरा है 2500 रुपए कमरा, एक कमरे में 7-8 लोग रहते हैं और वहाँ 40 लोग हैं बिहार के अभी, तो राशन खत्म हो गया था। तो उनसे मैंने बात बात किया, नॉर्म स्टोरी कर दी, उसके बाद क्या हुआ कि काफी संख्या में मतलब राष्ट्रीय जनता दल के वहाँ स्थानीय लोग हैं, कांग्रेस के, इन सब ने अलग अलग तरीके से उन तक राशन पहुंचाया, तो ये स्थिति है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाह रहा हूँ जो अनुमेहा मैम भी कह रही थी कि अभी गांव में क्या हो रहा है, जो बिहार यूपी से मजदूर गए हैं, तो मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ बिहार में, कि यहाँ भी कास्टिज्म दिख रहा है, कास्ट कैसे काम करता है, जो लोग लोअर का कथित तौर से जो छोटी जाति है, सो कॉल्ड छोटी जाति, वो उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है जो गाँव में सरकारी स्कूल है उसके अंदर, और जो लोग सवर्ण समुदाय से है ठीक है वो लोग नहीं जा रहे हैं क्वारंटाइन होने। वजह यह है, एक मतलब कल मुझे मैं एक रिपोर्ट कर रहा था, रिपोर्ट के लिए बातचीत कर रहा था, तो मुझे ये डिटेल मिला कि जो लोग सवर्ण समुदाय से हैं, ये मेरी स्टोरी से अलग है, मैं चाह रहा था इस पे थोड़ी चर्चा हो, कि जो लोग सवर्ण समुदाय से हैं, जो मान लीजिए मुखिया है वो सवर्ण समुदाय का है, और गाँव में कोई बाहर से व्यक्ति जा रहा है जो सवर्ण समुदाय का है और वही दलित जा रहा है, उनको जिस स्कूल में रखा जा रहा है उस स्कूल के अंदर सुविधाएं तो है नहीं, जमीन पे सोना पड़ता है, तो एक सवर्ण समुदाय का आदमी दलित समुदाय के आदमी के साथ जमीन पे सोएगा नहीं। इस वजह से जो सवर्ण लोग जा रहे हैं 14 दिन के लिए जाने रखा नहीं जा रहा है,
बहुत इम्पोर्टेंट
इस पे स्टोरी करो, बहुत जरूरी है।
जो दलित है उनको रखा जा रहा है, हमारे गांव में बहुत सारे लोग गए लेकिन जो चार लोगों को रखा गया वो दलित समुदाय से है।
जी
करो, ये हैरान करने वाली बात है जो गांव से दिख रही है।
राइट, एनीथिंग दैट यू गाइस वुड, एनी कमेंट्स एनीबॉडी वांट्स टू मेक ऑन दिस?
फेक न्यूज मत करो यार बस।
एंड अनुमेहा, डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड?
नहीं, जो इन्होंने लास्ट बात बताई है मुझे लगा ये बहुत जरूरी है। और ना इस एक ये भी बात है कि ज्यादातर इंग्लिश रिपोर्टर्स के पास उस तरह के कॉन्टैक्ट्स ही नहीं होंगे जैसे अभी बसंत ने बताया, यू नो एक न्यूज इस तरह की आएगी नहीं क्योंकि किसी को पता ही नहीं होगा कि जब वो एक बार गांव पहुंच गए तो फिर क्या हुआ, उनसे बात भी कैसे करी जाए जब हम खुद ही अपने शहरों से 100 किलोमीटर दूर भी नहीं गए हैं, जब रिपोर्टिंग ही कम हो गई है पहले से, यू नो तो लोगों को पता भी कैसे चलेगा उन्हें संपर्क किया जाए। उन्हें आप जो बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। और ये ना एक न्यूज लॉन्ड्री में कल एक स्टोरी है उसमें भी वो यही आशा वर्कर बता रही है कि जिन्हें जो गांव में थोड़े से संपन्न है जो कोई जर्मनी या कुछ आए थे वो आशा वर्कर की बात नहीं सुन रहे क्योंकि वो जाति वगैरह में आशा वर्कर से ऊंचे हैं, तो उन्होंने कहा हमें तुम्हारी बात नहीं सुननी मतलब क्वारंटीन वगैरह की, यू नो। तो शायद एक आई थिंक ओवरऑल ये जो पैंडेमिक है ये हर देश की अपने अपने इश्यूज को और भी ज्यादा एक्सपोज कर रहा है और मे बी इसलिए हम अपने रिलीजन कास्ट क्लास ये सब चीजें और भी ज्यादा बढ़ के आ रही हैं। लेकिन एक ये भी बात सबको एक रिफ्लेक्शन का टाइम भी दे रहा है, एक ना एक सिस्टम का एक बहुत ज्यादा एक्सपोज कर रहा है हम उससे क्या समझते हैं और क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, यू नो व्हाट डू वी मेक ऑफ इट नेक्स्ट, लाइक समथिंग रियली टू सी।
राइट, ऑलराइट, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम। लेट्स गेट टू सम रिकमेंडेशंस। बसंत,
मैं कहना चाहूंगा कि एक जो प्रतीक सर की स्टोरी आई है अपने इंग्लिश में उसकी काफी तारीफ हो रही है तो मुझे लगता है उसे पढ़ना चाहिए। और कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये जैसे मैम कह रही थी कि बिहार जो लोग गए हैं उनकी क्या स्थिति है, तो बीबीसी कुछ लोगों को फॉलो कर रहा है जिसमें एक है कि यहाँ से साइकिल से एक व्यक्ति 800 किलोमीटर कानपुर के पास अपनी पत्नी को साइकिल पर लेकर गया तो कैसे वो वहां पहुंचा है। बीबीसी ने इस पर कुछ स्टोरी की है जिसमें सीटू तिवारी बिहार से कुछ रिपोर्ट की है और समीरात्मज मिश्र जिन्होंने यूपी से कुछ स्टोरी की है कि कैसे मजदूर पहुंचे बिहार और यूपी, उनका पूरा स्ट्रगल क्या है रास्ते भर का। तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि पढ़ना कि कोई 1400 किलोमीटर ठेले से साइकिल से कैसे पहुंचा है।
राइट,
आई थिंक एक्चुअली आई एम नॉट सो श्योर, आई हैव बीन फॉलोइंग फार मोर ऑफ द इकोनॉमिक एंड लाइक दिस थिंग। But I found it useful that, you know, health reporters have been pooling their thinking together and putting out lists of questions which governments should be responding. I think those are a must read for all Indians who want to, you know, if you're invested in what's going on in the country, we should all perhaps be educating ourselves much more on what's happened to public health in our country in the last 10 years and also what's right now happening. So Scroll has published two of those articles saying what are the 10 top health questions that are not being answered. But though Scroll has published it, it's a community effort. Several journalists have come together and framed those questions, right? From across organizations, health reporters from across organizations have put together lists of questions. So I think it's a good recommendation. I mean, it's a good read. And there is a podcast which I heard, which is he's a US biologist who's, you know, because we've only been hearing this, oh, bats did it, Chinese did it, and so on.
I know.
So there's a biologist called Rob Wallace. He's on American Scholar on a podcast in which he's discussed the links between industrial agriculture, how that displaces communities, palm oil and so on, rainforest being replaced by palm oil plantations, and basically this push to large scale industrial agriculture and what that may be doing to ecosystems and how that is leading to pandemics or these kind of infectious diseases recurring every few years. So I found that a useful thing to listen to.
Pratik?
Nuisance, Manisha ka.
Nuisance, arey main bhi recommend karne wali thi.
Ji. Solid hai.
Mazedar to hai.
Ji.
Dekhna aur sahi ho.
Yeah, so the latest episode of TV Nuisance is called Tablighi Jamaat versus Arnab Goswami.
Arnab Goswami.
And yes.
#GoTalent.
Yeah. So basically Manisha talks about and she points out how TV news anchors found an excuse to tarnish all Muslims as Corona jihadis and, you know, indulge in some good old dog whistling. So that is also one of my recommendations. And in case you want to zone out from all of this, my other recommendation is this bizarre interview of the surrealist painter Salvador Dali on the Dick Cavett show. एंड आप लोग, आपको पता है ना साल्वाडोर डाली?
पता है, पता है.
हाँ, या सो या
ड्रीम्स के बारे में पेंटिंग बनाते हैं वही ना, स्पैनिश पेंटर,
द वन विद द फनी मस्टाश. Yeah, so his interview on the Dick Cavett show, you know, for a man like Dick Cavett who makes a living out of talking, he was like completely dumbstruck by Dali because it is so bizarre. He walks in with an anteater on a leash and there's this really poised, you know, hoity-toity woman sitting there on the set and he just throws it on her lap. And then he goes on and he's got this Catalonian accent, very thick accent. And he goes on to talk about the importance of a mustache. And this Dick Cavett is completely, you know, dumbfounded. He doesn't know what to say. So I think most of us know Dali through his paintings. So it's, I think watching that interview is just gives you a lot of perspective into the man he was. Quite bizarre and eccentric. Yeah, so that is my recommendation. And guys, listeners, if you liked what you heard, please rate our podcast on iTunes or whatever platform you're tuned into. We also have a bunch of other podcasts like Hafta and Awful and Awesome. Better the rating, more the reach, and that means more subscribers, and that in turn means better content. Also write to us because we're very eager to hear your feedback. You can send an email to contact@newslaundry.com with Reporters Without Orders in the subject line. You can also leave your comments on Twitter, Instagram and Facebook.
और ये podcast आपको अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने social media पर जरूर साझा करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें.
And with that, this podcast is adjourned.
All the News Laundry podcasts are available on Stitcher, iTunes and any other podcast platform.
Please subscribe to News Laundry. Help us keep news independent. To catch all our podcasts on news, pop culture, current affairs and sport, visit newslaundry.com. Follow us on Facebook, Twitter and Instagram and subscribe to our YouTube channel.